तवात्मज तुम्हारा आत्मज वाला है समस्त देवता कंस के कारागार में अलक्षित रूप से आए हैं। अलक्षित से तात्पर्य है कि मनुष्य उन्हें नहीं देख पाते थे, परंतु प्राय सभी देवता जुटे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसमें ब्रह्मा जी और भगवान शिव मुख्य थे, और नारद जी, शनकादिक ऋषि, इंद्र आदि देवता प्राय सभी आए थे। तो वे लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आश्चर्य है कि भगवान गर्भ में है और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान चाहे गर्भ में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे कहीं हो, भगवान भगवान है, देवता उनके सेवक हैं और वे लोग स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुण गा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का गुण गाना यही जीव का धर्म है। देवता सब आए और भगवान का यश गा रहे हैं। सबसे पहले वे लोग भगवान को सत्य के रूप में बता रहे हैं कि हे नाथ, आपने जो कुछ कहा आज से बहुत वर्ष पहले वो आपने पूरा कर दिया। तो अपनी प्रतिज्ञा भगवान ने पूरा किया, इसलिए सत्य के रूप में ही पहले उनका निरूपण कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सजोनीम निहितम च सत्य सत्यस सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य व्रतम, आपका संकल्प सदा सत्य होता है, आप जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, और सत्य ही आपकी प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है। वहां सत्य का अर्थ है भक्ति योग। आप तीनों काल में सत्य हैं, सृष्टि होने से पहले भी रहते हैं, सृष्टि होने पर रहते हैं, सृष्टि समाप्त हो जाने के बाद भी रहते हैं, और आप ही यथार्थ वाणी के प्रवर्तक हैं और आप समदर्शी हैं। तो हम सब सत्य स्वरूप आपकी शरण ले रहे हैं, हम सब आपकी शरण में। बताइए, कोई बच्चा मनुष्य का माँ के पेट में हो तो कोई दूसरा व्यक्ति शरण लेगा उसकी? उसी की हालत खराब है उधर में, वो क्या करेगा? आप जरा विचार कीजिए भगवान की भगवत्ता पर। भगवान गर्भ में है और सारे देवता आकर शरण ले रहे हैं। सत्यात्मकम तो हम शरणम प्रपन्न, हम शरण में। क्या संसार में कोई दूसरा ऐसा बालक है जिसकी शरण में कोई आवे और कुछ करे? वही भगवान की शरण में रहता है कि हमको गर्भ से बाहर निकालिए, हम भजन करेंगे आपका। लेकिन यहाँ पर मुक्त पुरुष देवता आकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान गर्भ में। कभी कभी वैष्णवों में इस प्रकार का विवाद होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आए थे, वास्तव में केवल माँ देवकी के उदर में कुछ हवा भरा हुआ था, बस भगवान नहीं। यह कहना बहुत भारी गलती है, भगवान गर्भ में आए हैं। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के आने से पहले ही माता देवकी का उदर ही गोलोक बन चुका है, पूरा स्पिरिचुअल हो चुका है, और भगवान उसमें रह रहे हैं, आनंद से हैं, और गर्भ में आने से माँ भी आनंद में, वह भी बहुत प्रसन्न थे। ऐसा लिखा गया है कि कंस जब कारागृह में देवकी की दशा देखने गया तो वह देवकी को बहुत प्रसन्न देख। इसके पहले देवकी बहुत खिन्न रहती थी, आठवां गर्भ आने के पहले वो खिन्न रहती थी, लेकिन आठवां गर्भ जब हुआ तो बहुत प्रसन्न रहने लगी, बहुत खुश रहती थी। बैठाइए महात्मा जी, सब देवता ऋषि मुनि जुट रहे। हाँ, लेकिन ऐसे लोग आते नहीं हैं, उनको कुर्सी पर उधर बैठा दीजिए, आप वहाँ बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, उधर बैठ, इधर माता जी लोगों का है। तो उसने देखा कि देवकी बहुत प्रसन्न है, कोई गर्भवती स्त्री बहुत प्रसन्न नहीं होती है। एक तो उसे चिंता होती है कि बच्चा ठीक से है नहीं है, और उसे प्रसव की चिंता बनी रहती है, और दूसरा देवकी के लिए तो बहुत संकट की बात थी कि इसी आदमी गर्भ को मारने के लिए कुछ अन्य बच्चों मारा है, तो उसे तो और दुख होना चाहिए था। लेकिन सुचिस्मिताम, उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी, आनंद भी से आ रहा था, भगवान आनंद घन है, इसलिए देवकी की इंद्रियां, उसकी आंखें, उसका मुख, कान, हाथ पर सब कुछ आनंद से खिला हुआ, आनंद विकीरण हो रहा है भगवान से। तो कंस देख करके आश्चर्यचकित हो गया, ये तो पहले ऐसे नहीं थी। न पुरैयम ईदृशी, यम पूरा ईदृशी न, ऐसे पहले नहीं थी, जब देखता था तो रोती रहती थी, खिन्न रहती थी, इस बार क्या बात है, तो समझ गया निश्चित ही हरि के गर्भ में प्रवेश कर चुका है। तो सोचने लगा तब मुझे क्या करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए, मारो देवकी को भी, उसके बच्चे को भी, और क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए। लेकिन वो विचार करने लगा, नहीं नहीं देवकी को नहीं मारूंगा, जन्म हो जाने पर इसके बच्चे को मारूंगा, देवकी को नहीं मारूंगा। उसी देवकी के प्रति यह दया भाव आ गया, जो उसी देव के प्रति दया भाव आ रहा है, जिस देवकी को विवाह के दिन ही कंस मारना चाहता था, और वो दया करके देवकी को नहीं छोड़ा था, इस शर्त पर छोड़ा था कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे उनको ले हवाले किया जाएगा, मैं मार दूंगा, तब मैं देव को छोड़ा। तब तो सात पुत्र हो गए थे, सातवें का पता नहीं चला, लेकिन सातवां हो चुका था, श्री बलराम जी ब्रज में मां रोहिणी के घर में चले गए थे बहुत पहले। तो सोचता है कि ये क्या बात है, इतना क्यों प्रसन्न है, ऐसे वैसे है। देवकी प्रसन्न है, कंस देख रहा है सब कुछ, तो उसके मन में आ रहा है कि मैं देवकी को नहीं मारूंगा, इतना सद्विचार आ गया। पहले में यही निर्णय था कि आठवां गर्भ जो होगा तो उसी समय देवकी को ही मार दूंगा, बच्चे को ही मार दूंगा, खत्म हो जाएगी। तो उसको विश्वास नहीं था कि बच्चा जन्म लेगा तो उसे मार पाऊंगा या कुछ भी करूंगा। लेकिन देवकी जो हरि युक्त थी, भगवान युक्त थी, तो उसको ऐसे देवकी को देख उसका हृदय बदल। असुरी जी कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान आ जाते हैं उसको देख करके क्रूर से क्रूर व्यक्ति का चित्त बदल जाता है, ये भगवान के हृदय में आने का प्रभाव होता है। जो शिक्षा दिए जाके बाद भी कंस नहीं मान रहा था, देवकी की चोटी बहुत काल तक पकड़े रहा, और तलवार लेकर के वसुदेव जी को बहुत प्रकार से समझना पड़ा था, तब जाकर के माना था, लेकिन आज कोई नहीं है उसके पास जाने वाला है, और देवकी देख करके बदल गए। अगर नहीं, मैं देवकी का वध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? ये तो ये स्त्री है, उस दिन रथ पर विवाह हुआ था तो पुरुष गई थी। देखिए चार में परिवर्तन, एक तो स्त्री है, स्त्री पर वैसे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए, दया करनी चाहिए, और दूसरे मेरा संबंधी है, मतलब मेरी बहन है, और तीसरे गर्भवती है, कदापि नहीं मारूंगा। यदि देवकी का वध कर देता हूँ तो संसार में मेरा अपजस आएगा, सब जगह लोग में निंदा करेंगे, अब तक तो तुम्हारी प्रशंसा सारे ब्रह्मांड में हो रही, जेल में बंद किया, इतने बच्चों की हत्या कर दिया, लेकिन सोचता है कि फिर भी मैं जसवी हूँ, लेकिन देवकी का वध करता हूँ तो मेरा नाम डूब जाएगा, सब लोग मुझ पर थूकेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। तो यह भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी इज्जत को नहीं गंवाना चाहिए, सबसे पहले अपना सम्मान देखना चाहिए, अपनी कीर्ति देखनी चाहिए। और अब तक के कुकर में से इसकी कीर्ति नष्ट हो गई है, इसका थोड़ा भी अनुसंधान नहीं था, थोड़ा भी अनुसंधान नहीं। लेकिन कुछ भी है, ये जो विचार आया कंस के मन में देवकी को देख कर, तो यह इसी कारण से कि देवकी के हृदय में श्री भगवान है, यह भगवान का गुण है। भगवान जहाँ होते हैं वहाँ सद्विचार चाहिता है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय जी, संपूर्ण भगवत गीता कहने के बाद महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे महाराज, जहाँ श्री कृष्ण है जोगेश्वर श्री कृष्ण, और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, विजय उसी पक्ष की है, वही श्री है, वही ध्रुवा नीति है, और यह मेरी मति है, मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अभी भी फोन करके कुरुक्षेत्र का युद्ध रोक दीजिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र नहीं माने, साफ बोल रहे हैं जहाँ जोगेश्वर कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, उसी पक्ष की विजय है, वही विजय है। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वही विजय है निश्चित। तो जहाँ भगवान है वास्तव में सद्विचार वही है, वही सुख है। ऐसा कुकर्मी भी देवकी के दर्शन से बदल गया, क्योंकि देवकी के भीतर से भगवान रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, ये प्रभाव पड़ा तो प्रतीक्षा करने लगा। आस्ते प्रतीक्षण तत् जन्म हरेर बैरानुबंध कृत। भगवान से तो उसका बैर था, भगवान पर दया नहीं आ रही थी, देवकी पर दया आ गई, लेकिन बच्चा जब जन्म लेगा विष्णु आएगा उसको मार करके रहूंगा, और उसको मारेगा, बच्चा को मार देगा तो इसकी कीर्ति बनी रहेगी। देखिए इसका जो कुछ भी हो इस तरह से वो कहता है कि देहे मृते तम मनुजा सपंती गंता तमंधम तनुमानिनो ध्रुवम। जो कोई व्यक्ति बहुत क्रूरता से व्यवहार करता है, बते तो यो अत्यंत निशंसित है ना, जो व्यक्ति बहुत क्रूरता का व्यवहार करता है तो सामने तो नहीं, लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग उसकी खूब निंदा करते हैं, तो नरक में गिरे, यह गिरे, वह गिरे, और लोग तो निंदा करते ही रहते हैं। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक उसकी अपकीर्ति गाई जाती है, और निश्चित वह नरक में जाता है। अब तक कंस को विश्वास है कि मैं नरक में नहीं गिरूंगा, अभी तो स्वर्ग में जाने लायक सब काम कर रहा था। इसी तरह लोक में लोग सोचते हैं, कोई भी व्यक्ति मतलब आप अपने को पापी नहीं मानता है, संसार कहने के लिए झुटमुट के कह देते मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मन में होना कि मैं पापी हूँ यह दूसरी बात। कंस नहीं मान रहा था, तो वह देखा प्रतीक्षा कर रहा था, कंस प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण के जन्म की, कृष्ण जैसे ही प्रकट होगा उसको उसका वध कर दूंगा। लेकिन देवताओं से अधिक तत्परता से प्रतीक्षा कर रहा था, और देवता प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान प्रकट होंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे, उनको कुछ उपहार देंगे, बधाई गाएंगे, बजाएंगे, पृथ्वी का भार उर होगा। तो दो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, एक देवता और दूसरा कंस, और कंस के कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो देवता सब स्तुति कर रहे हैं, स्तुति में बहुत सी बातें वे भगवान से कहे, अब तक जो भी स्तुति में बात कर रहे थे डायरेक्ट भगवान से कह रहे थे, डायरेक्ट भगवान से कह रहे थे, लेकिन अंतिम श्लोक जो यह है वे माता देवकी से कह रहे हैं देवता लोग, और कहते हैं माँ बड़े सौभाग्य की बात है, दिष्ट्या का अर्थ होता है सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से, तुम्हारे सौभाग्य से, और समस्त जीवों के सौभाग्य से भगवान परमेश्वर तुम्हारे गर्भ में आए हैं। हमें बहुत सौभाग्य, और माँ देवकी को अम्ब कह रहे हैं माँ, तो जो भगवत जननी है, भगवान की माँ है, वो तो सबकी माँ है। इसमें अम्ब कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा भी देवकी को माँ कह रहे हैं, और शिव जी भी माँ कह रहे हैं, इंद्र नारद जी आदि सभी अम्ब कह रहे हैं। तो वास्तव में वह तो सबकी माँ है, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं। ओरिजिनली भगवान के ही सुपुत्र हैं, और भगवान की माँ देवकी है, तो देवकी तो सबकी माँ हुई। तो अम्ब शब्द बहुत बड़े गौरव को प्रकाशित कर रहा है कि हे जननी, हे अम्ब, हे माँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे गर्भ में कम पुरुष से भगवान आए हैं, और अंश न अपने अंश के साथ। देवताओं का कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पहले जो सातवां गर्भ तुम्हारा था, वह इन्हीं का अंश था। यदि मां नहीं समझ रही होगी तो, परंतु देवता लोग अपनी बच्चे रक्षा इस तरह कर रहे हैं, अंश न साक्षात परम ईश्वर श्री कृष्ण अपने अंश श्री बलराम के साथ तुम्हारे गर्भ में आए। तो जरूरी नहीं कोई से कि उस समय क्या बलराम जी गर्भ में थे। तो एक सिद्धांत ये है कि पूर्ण भगवान जहाँ होते हैं वहाँ उनके सारे अंश उस समय रहती हैं। श्री बलराम जी वास्तव कृष्ण से प्रथम हैं, लेकिन इसका एक और यह भी है कि श्री बलराम इसके पहले गर्भ में थे। तो उसकी तुम चिंता मत करो, वही अंश कहीं पर जन्म ले। खोलकर नहीं कह पाए रोहिणी जी के गर्भ से वो जन्म ले। माँ देवकी कभी कभी रोया करती थी कि मेरा अथवा गर्भ कंस मंत्र से उड़ा दिया। वो बहुत चिंता रहती थी कि सातवां गर्भ पता नहीं क्या करा दिया कंस। वो मानते थे कि कंस चीज ताकत द्वारा हमारे गर्भ को उड़ा दिया। वो तांत्रिक नहीं उड़ाया था, वास्तव में भगवान ने कहा जो माया को कि आप श्री बलराम को माता देवकी के गर्भ ले करके रोहिणी जी गर्भ कर दो, इसके बाद माता देवकी के गर्भ में। परंतु वसुदेव जी या देवकी किसी को पता नहीं चला कि अकस्मात गर्भ कैसे अदृश्य हो गया। वास्तव में अति आश्चर्य की बात। और मथुरा में जब लोगों को पता चला कि देवकी का सातवां गर्भ अदृश्य हो गया, तो सब लोगों ने कंस को गाली देना चालू किया अपने घरों में। उस अलग निश्चित इसी को जाल किया, इसी ने जाल किया। बच्चों की हत्या करता था तो उसने सोच कि संसार मेरी बदनामी हो रही, तो दूसरे तरीके से गर्भ खत्म करना चाहिए। मथुरा के लोग ये सब अच्छा कर रहे हैं। ओ विश्वमितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुस, वो लोग मान रहे कोई उपाय करके गर्भ साबित कर दिया उसने। विचुक्रुस पूरा पूर्वा से मथुरा नगर के लोग इस तरह से शोक कर रहे थे, हाय हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन उस रहस्य का उद्घाटन देवता लोग आज कर रहे हैं कि माँ इसके पहले जो तुम्हारा गर्भ था बच्चा था वे भगवान के अंश थे, और उनको कोई नहीं मार सकता है। कुछ देर तुम्हारे उधर में थे और वे चले गए दूसरी जगह, और इस समय जो है साक्षात परमेश्वर भगवान है। बड़े सौभाग्य की बात, भगवान को उधर में देख करके देवताओं को इतनी खुशी हो रही। तो भगवान का अवतार हो ही गया, हो गया बरह पुमान भगवान। किस लिए भगवान अवतार ले रहे हैं? सबसे पहले देवता लोग अपने लिए कह रहे हैं कि न भवाय अस्माकम भवाय समृद्धि तवे समृद्ध है, हम लोगों को पोषने के लिए, हम लोगों को बढ़ाने के लिए, सुखी करने के लिए भगवान तुम्हारे गर्भ में आए। देवता इस बात को समझ जाते हैं वास्तव में कि भगवान का आगमन उनके कल्याण के लिए हो रहा है। इस बात का रियलाइजेशन करना यह बहुत ही ऊंची भावना है कि भगवान हमारे हित के लिए आए, हमारे रक्षा के लिए आए, समृद्धि के लिए आए। इस बात पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रायः भागवत कहने वाले चाहे प्रचार करने वाले भक्त कुछ ऐसी बातों का प्रचार कर देते हैं जैसे लगता है कि भगवान की भक्ति करना यह परिवार आदि की ममता तोड़ करके ही संभव है। कुछ लोग ऐसा सच सोचते हैं कि परिवार की उपेक्षा करके अथवा केयर न करके मरना चाहिए, लेकिन यह कह रहे हैं को भी पोषते हैं, सब प्रकार की समृद्धि करते हैं, भगवान परिवार को आशीर्वाद देते हैं, धन देते हैं, आरोग्य देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, सब तरह की सफलता देते हैं। जैसा देवकी और वसुदेव के विषय में देखिए, तो पहले हम लोग देवताओं के विषय में देखें, इंद्र भगवान के भक्त हैं, क्या इंद्र अपने परिवार की या स्वर्ग की बिल्कुल उपेक्षा करके भगवान का भजन करते हैं? नहीं, बल्कि स्वर्ग को समृद्ध रखने में भगवान मदद करते हैं, भगवान इंद्र के लिए अवतार लेते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे, मृडयंती सुखयंती, भगवान इंद्रारी से व्याकुल मतलब असुरों से व्याकुल जगत को सुखी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है कि इनका भजन बस घर द्वार छोड़ करके और विरक्त बन करके किया जाता है, नहीं नहीं नहीं, भगवान ने सब तरह से सुख देते हैं। जिन लोगों ने भगवान का भजन किया उनके प्रकट समय में, श्री कृष्ण के समय में, आप उनको विचार कीजिए कितना वे सुखी थे, और जगत की दृष्टि से भौतिक दृष्टि से उस समय के सबसे सफल व्यक्ति वे लोग होते थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज के सामने भगवान ने सारे जगत को झुका दिया, युधिष्ठिर महाराज राजा के राजा रह गए। जो कार्य भगवान किसी व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए वह कार्य करके भी भगवान ने पांडवों को विजयी बनाया। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं विजय रथ कुटुम्बे आततोत्रे धृतहय रश्मिनी तच्छ्रिय क्षणीय, अर्जुन का रथ ही भगवान का कुटुम्ब था। मनु महाराज ने कहा है मनुस्मृति में कि कुटुम्ब का पालन करना चाहिए मनुष्य को, जरूर ध्यान देना चाहिए, बच्चों का पालन, स्त्री का पालन, माता पिता का पालन, भाई का पालन। तो कुटुम्ब का अर्थ होता है कि कुछ कुत्सित कर्म करके भी जिसका पालन किया जाना धर्म है, किया जा सकता है। अच्छे कर्म करने से पालन हो ठीक है, लेकिन कभी इमरजेंसी में यदि कुछ गलत काम भी करना पड़े परिवार के पालन के लिए तो किया जा सकता है, इसीलिए परिवार को कुटुम्ब कहते हैं। तो अर्जुन का रथ ही भगवान का कुटुम्ब था, विजय रथ कुटुम्ब, अर्जुन के रथ की रक्षा भगवान बहुत से अन्याय कार्य करके भी करते थे, ऐसा लिखा गया महाभारत में। कई तरह से वे घोड़ों को ऐसे चलाते थे, हाँकते थे, कभी रथ को ही नीचा कर देते थे, कभी ऊंचा कर देते थे, किसी भी तरह से रक्षा करते थे। और इस दृश्य को भीष्म पितामह देखते रहते थे, कैसे अर्जुन को बचा रहे हैं, अर्जुन के रथ को बचा रहे हैं, अन्याय करके भी अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। और वो चक्र उठा लेना, रथ का पहिया उठा लेना एक बहुत बड़ा अन्याय था कृष्ण के द्वारा, अपने वचन को छोड़ देना ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन अन्याय सहकर भी, अन्याय करके भी श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। अपने मित्र को विजय दिलाने के लिए घोड़े हाँक रहे हैं, पसीने से लथपथ शरीर हो गया था, भगवान को एक क्षण फुर्सत नहीं होती थी कि वे अपना पसीना पोछे, रथ हाँकने में सुंदर सुंदर बदन पर पसीने की बूंदे आती थी, तो पसीना भगवान नहीं पोछ पाते थे, उनके सुंदर केश जो लटके रहते थे मुख पर वह उसी से पसीना पोछ लिया जाता था, इतना व्यस्त अर्जुन को विजय देने में। रथ हाँकते थे घोड़ों को, आ आ आ बेटा ऐसा कहा करते थे, और हाथ में दाहिने हाथ में चाबुक, बाएं में लगाम, दोनों हाथ तो फंसे हुए थे, पर करेंगे
इस संसार में प्रायः मनुष्यों का संबंध देखा जाता है परिवार से। अब कोई कहे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कहे कि इनकी आसक्ति छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, कि कौन छोड़ेगा? और छोड़ देने से ही बस वो भक्ति करने लगेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो कोई गारंटी है नहीं। इसलिए भगवान ने जो पथ चलाया है वही उसी पर चलना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि गोपियां तो अपना परिवार छोड़ दी थी कृष्ण के लिए, लेकिन आप भगवान का प्रवचन पढ़िए, उद्धव जी से कहते हैं कि जो मेरे लिए कर्म छोड़ देता है, अपने स्वजनों को छोड़ देता है, तो उसके स्वजनों का पालन मैं करता हूं, ऐसा वे कहते हैं। गोपियां उपेक्षा करती थी परिवार की, परंतु गोपियों के घर में धन भरा रहता था, सारा काम ठीक से चलता था और गोपियां भी घर के काम को बहुत अच्छे से कर देती थी। यह भागवत में वर्णन है, कोई कभी अभाव नहीं हुआ, घर में किसी बात की कमी नहीं हुई और कभी भी पति आदि विरोध नहीं किए। वहां पर भगवान ऐसी माया रचते थे कि गोपियां दिखाई देती थी अपने अपने पतियों के साथ स्वपार्श्वस्थान। रासलीला में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही थी वृंदावन में, लेकिन सभी गोपों ने देखा कि गोपियां उनके पास हैं। इस तरह से मानते हैं। अथवा इसका एक अर्थ होता है कि श्री कृष्ण के पास होना वे अपने पास ही होना मानते थे, इतना अनुकूल भाव से। लेकिन वास्तविकता यह है कि वास्तव में गोपियां वर्तमान थी अपने अपने पतियों के साथ। यह भगवान की व्यवस्था है, भगवान विघटन नहीं होने देते हैं। गोपियों को इस बात का बहुत दुख रहता था कि कुछ गोपियां रासलीला के समय पतियों द्वारा घर में बंद कर दी गई थी, तो उनका शरीर छूट गया, वे मर गए। इस बात से अन्य गोपियां बहुत दुखी रहती। लेकिन जब मथुरा से भगवान ने पत्र लिखा और उद्धव जी के हाथ से भेजा, तो उस पत्र में भगवान ये लिखे कि तुम उन सखियों के लिए शोक मत करो जो शरीर छोड़ दी, ये सब मेरे पास हैं। भगवान ऐसा कहते हैं, लास्ट संदेश यही था, वे सब मेरे पास हैं। कल जड़ शरीर मात्र छूटा, लेकिन वे सब मेरे पास हैं। और वैसे उस शरीर से भी, बाह्य शरीर से भी, वे अपने पतियों के साथ थी। गोपियों को केवल इस बात की आशंका करके शोक हो रहा था, लेकिन वास्तविक स्थिति नहीं थी। एक तो भाव शरीर से कृष्ण के पास थी और दूसरे शरीर से अपने पतियों के पास ही थी। तो भगवान इस जगत में आते हैं तो सबके विकास के लिए, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, तो सबसे पहले वे देवताओं को सुखी करते हैं, क्योंकि देवता संसार का, संसार की व्यवस्था देखते हैं। देवता यदि सुखी रहते हैं तो सब लोग सुखी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देवता अब विरक्त हो करके लोटा कमंडल ले करके चला तब भगवान का भक्त हुआ है। देवता तो जैसे हैं वैसे ही रहे, अपने अपने पदों पर रहते हैं और वे भगवान के परम भक्त होते हैं। यह जो मान्यता है कि विरक्त हो जाना चाहिए भगवान के भजन के लिए, ऐसे होना, ये कोई उचित धारणा नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण से प्रेम करना यह मुख्य बात, और वह प्रेम देखा गया श्री कृष्ण की लीला में कि सभी देवता प्रेम किए भगवान, और देवताओं के धन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके सब कुछ को भगवान ने बढ़ाया। जब लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए ये छोड़ो, वे छोड़ो, ये छोड़ो, तो लोग नहीं छोड़ते हैं और भगवान की भक्ति से डरते भी हैं। आप देखते हैं संसार में दूसरे लोग जब प्रचार करते हैं तो वे कहते हैं कि तुम हमारे मत को स्वीकार कर लो, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब झूठा होता है। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण को कोई स्वीकार करे तो उसका घर आबाद हो जाता है, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं ये अमुक देवता तुम्हारा केयर करते हैं, ये केयर करते हैं, ये केयर करते हैं, लेकिन वास्तव में सभी जीवों के अकारण सुहृद भगवान कृष्ण है, सुहृदम सर्वभूतानं। तो भगवान के इस स्वभाव को पहचान कर हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में भगवान को बसाना चाहिए। तो हमारे अभ्युदय के लिए भगवान आ रहे हैं, और यह भी माता देवकी को आश्वासन दे रहे हैं कि माँ माँ भूत भयम, भय मत करो, माँ को आश्वासन दे रहे भय मत करो। इससे सिद्ध होता है कि देवकी को तो प्रसन्नता तो थी गर्भ में आने से भगवान के, लेकिन रह रह करके भय हो रहा था कि इसको भी कंस मार देगा, बहुत भारी भय में थी, कांपती रहती। तो कहते हैं माँ भूत भयम भोजपते, भोजपति से रावण से कंस से भय मत करो, कंस से भय मत करो, क्योंकि मुमूर्ष हो, अब वो मरणासन है, वो मरने वाला है, 10-11 वर्ष के अंदर ही मर जाए। या भगवान आ गए तो वो मर गया, जैसे लगता है कि डेथ बेड पर है, ऐसे देवता वर्णन कर रहे हैं, मुमूर्ष हो, अब मरने वाला है, कंस से भय मत करो। गोप्ता जदूनाम भविता तवात्मज, जादवों का रक्षक तुम्हारा पुत्र होगा, तवा आत्मज जदूनाम गोप्ता भविता भविष्यति, तुम्हारा पुत्र जादवों का रक्षक होगा। इसका अर्थ है कि केवल तुम्हारी ही रक्षा नहीं करेगा तुम्हारा पुत्र, समस्त जादवों की, भक्तों की रक्षा करेगा। तो इस तरह से इस श्लोक में बहुत ही सुंदर मंगल संदेश है कि भगवान सब तरह से समृद्ध करते हैं, पोषते हैं, मैं तुम्हारे संबंधियों को, तुम्हारे बंधुओं को, जादवों को तुम्हारा पुत्र पोसेगा। तवयात्मज कह करके मानो और ममता बढ़ा रहे। पहले तो कहे कि साक्षात भगवान है, और अंत में देवता कहते हैं तवयात्मज, तुम्हारे देह से उत्पन्न तुम्हारा पुत्र जादवों की रक्षा करेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और अब ये मरा हुआ है, चिंता मत करो, हम लोग इस संसार में देखा करते हैं कि प्रायः लोग चिंता करते रहते हैं, किसी न किसी बात की चिंता करते हैं, लेकिन चिंता तो उसे करनी चाहिए जो श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं किया है। जो व्यक्ति भगवान का चरण कमल ग्रहण कर ले, उसे वास्तव में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। भगवान चिंता करते हैं, और भगवान जी को बनाना चाहे तो उसको अपनी क्या चिंता करनी है। और जो कभी भगवान बारंबार कहते हैं शोक मत करो, शोक मत करो, जो कहता हूँ करो, पाप लगेगा, इतने लोगों को मारूंगा, ये होगा, वो होगा, दुर्गति होगी, भगवान कहते कुछ नहीं होगा, हम तो हम सर्व पापी भूमुख से मासूस, एक तो पाप लगेगा ही नहीं, भगवत आदेश का पालन करने में पाप लगे नहीं, लेकिन अर्जुन के मन के अनुसार भगवान बोल रहे हैं यदि लगा, और पहले लगा होगा, इस समय लग रहा है, आगे जितना पाप होगा सब मैं खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन भगवान पाप समाप्त करते हैं तो भगवान पापों से विद्ध नहीं होते हैं, अपाप विद्धम उनको लिखा गया। जैसे सूर्य अनादि काल से अंधकार खा जाते हैं, अंधकार न सर देते हैं, लेकिन सूर्य मलिन नहीं हुए अंधकार, ऐसा नहीं कि सूर्य काला हो गए, रोज अंधकार खा रहे हैं अपने किरणों से, लेकिन फिर भी उनका तेज बना हुआ है। ऐसा नहीं कुछ लोगों का पाप ले लिए और बस सूली पर झूल गए, दूसरे का पाप भोग रहे हैं, वाह रे वाह, दूसरे का पाप भोग रहे हैं। कृष्ण ऐसे नहीं है, वो सूर्य की तरह सबका पाप दूर कर देते हैं, लेकिन वो पाप श्री कृष्ण को छू नहीं पाते। गंगा जी पथ नष्ट कर दी है प्राणियों की, लेकिन वो मलिन नहीं होती है। बिल्कुल सोच भर रही थी मलिन हो जाऊं, लेकिन मलिन नहीं होती। तो भगवान सूर्य जब से है तब से तो अंधकार खा ही रहे हैं, खा क्या रहे हैं? वो तो उगते हैं तो कोटि कोटि योजन पहले ही अंधकार समाप्त हो जाते, खा क्या है? समाप्त कर देते हैं इसलिए कहा जाता है खा रहे हैं। तो भगवान पापों से मुक्त कर रहे हैं तो ये नहीं समझना चाहिए भगवान तप करते हैं या भोगते हैं ले लेते हैं, नहीं नहीं, उनका ऐसा स्वभाव है। उनका तो कोई एक नाम ले तो उसी से सारे पाप ध्वस्त हो जाए, कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। भगवान कहाँ पाप से संपर्क करेंगे, पाप ऐसे उनको छू सकता है। तो ऐसे पुरुष की शरण लेनी चाहिए ना, ऐसे भगवान की शरण लेनी चाहिए जो हमारी गलती हम अपराध को हमारे पापों को अपने आप समाप्त करते हैं। अर्जुन कहे नहीं कि हमारा पाप आप दूर किया कीजिए, लेकिन भगवान कहते मैं करूंगा, तुम चिंता करो। इसके द्वारा यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान ये कहते हैं कि तुम कंटिन्यूअस पाप करो और हम दूर किया करें, यह अर्थ नहीं है। लेकिन जो भी भूल चुक हो जाती है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं, क्षमा करते हैं और तरह से पोषते हैं। तो अरे परम आश्रय श्री कृष्ण को अपने लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए कृष्ण को वरण करना चाहिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, गांव के लिए, सबके लिए। कौन भजनीय है तो कृष्ण, बस एको देवम एको देवो देव की पुत्र है, एक ही आद्य है देव की पुत्र, और एक ही गीत होना चाहिए। क्या है वो? है देव की पुत्र का नाम, एक ही गान, यही मंत्र, एको मंत्रस्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कहीं कर्म होना चाहिए उनकी सेवा, एको देवो देवी पुत्र एवा, और कैसे है कर्मा पी को तस्य देवस्य सेवा, और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, ये पहले है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, देवकी पुत्र ने जो शास्त्र दिया है भगवत गीता, बस एक ही शास्त्र है। अर्थ है कि वो सीसीएंट है, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एकम मंत्रम तस्य नानानियानी कर्मा एको रस देव सेवा, एक ही शास्त्र है भगवत गीता, सिर्फ शंकराचार्य का लिखा हुआ है, वास्तव में सिर्फ रामानुजाचार्य का लिखा हुआ। तो इस तरह से समझना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, या सबके लिए वास्तव में आराध्य हैं भगवान श्री के, ग्रहण करना चाहिए। सुख समृद्धि छा करके ही रहती है। वृंदावन में बहुत सौ वर्ष पहले एक मतन हो गए हैं वैष्णव रसिक हरि राम व्यास, तो वे पद लिखे हैं, तो लिखते हैं कि देखे सुने न भक्त भिखारी, हमने न तो सुना है न देखा है कि भगवान कृष्ण का भक्त कोई भिखारी हो। देखे सुने न भक्त भिखारी, बल्कि हम लोग क्या क्या सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में ही सबसे टॉप क्लास के धनी लोग हुए, जैसे ध्रुव महाराज, और उनके बराबर तो कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी उन बहुत नीचे हैं उनमें, और शिव जी के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। वे तो है परम ईश्वर, लेकिन उनके पास रहता ही है कुछ से। कपड़ा तक नहीं है तो और क्या रहे, और सप्तर्षि आदि हैं, ये भी धनी हैं, तो ये सब तो परिक्रमा लगाते हैं ध्रुव महाराज, ध्रुव लोक की परिक्रमा लगाते रहते हैं, और हमेशा चौबीसों घंटे। इतना बड़ा धनी व्यक्ति कितने दिन में इतना बड़ा धन मिला? 6 महीने में, क्या करने से? महामंत्र जपने से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जपने से वे पा गए। ध्रुव सगलानी जप्यऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ,
रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं ध्रुव महाराज ने क्या किया, वे नाम जपे, वो भी बड़े दुखी हृदय से जप रहे थे, अपने सौतेली माता की याद आती थी तो बड़े अमर्ष से ग्लानी से जप रहे थे, लेकिन अचल और अनुपम स्थान पा गए और बहुत कम समय में। भगवान का नाम जप करके और वैकुंठ पा गए, ध्रुव लोक पा गए। ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम। कोई वैसा धनी नहीं है। नारद जी से ध्रुव महाराज ने कहा था या पूरा राज दिला देता, तो ध्रुव महाराज कहते हैं बाप का राज, बाप के बाप मनु और मनु के बाप ब्रह्मा को भी जो राज नहीं मिला है वो लेना है मुझे। अब मुझे मेरे कुल में जिस धन को कोई नहीं पाया है और दूसरे के कुल में भी जन्म लेने वालों को जो धन नहीं मिला है मैं वो लेकर के रहूंगा। इसलिए अब मेरे आंखों के सामने भगवान विष्णु का चरण कमल है, किसी भी हालत में मुझे भगवान से भेंट करनी है। तब नारद जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा निर्णय अच्छा है, तो इसके लिए जाओ वृंदावन, मधुबन जाओ, वो स्थान ऐसा है कि बहुत शीघ्र भगवान की प्राप्ति कराएगा। और नारद जी ने मधुबन का विशेषण दिया कि हरे चरण चर्चितम सानिध्यम नित्यदा हरे, ब्रज में मधुबन में भगवान नित्य रहते हैं, केवल वहां जाने मात्र से भगवान का संग मिलता है, न हो अनुभव न हो, लेकिन वास्तव में भगवान साथ में है हम लोगों। कोई भी व्यक्ति जो ब्रजमंडल में आता है तो भगवान का साथ मिलता है उसे, क्योंकि वहां रहते ही है, यहाँ गोचारण करते हैं, रास करते हैं, जलकेली करते हैं, गोवर्धन रहते हैं, गुफाओं में खेलते हैं, यहाँ रहते हैं वे। अच्छा, ब्रज का जहां भी बोल भागवत में आया है तो वहां अवश्य लिखा गया है कि भगवान वहां नित्य रहते हैं, सर्वत्र यह बात लिखी गई है, भगवान यहाँ नित्य रहते हैं। श्रीपद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक बार कथा कह रहे थे, तो कह रहे थे और तीर्थ में भगवान को बुलाना पड़ता है, बुलाते हैं भक्त लोग, आप दर्शन दीजिए आई आई, लेकिन वृंदावन उनका घर है, यहाँ तो भगवान बुलते हैं दूसरों को, उनको बुलाना ही पड़ता है, यहाँ वे रहते ही हैं। तो अब मुझे किसी का अपना घर हो तो कोई ये थोड़े कहेगा कि आकर थोड़ा अपने घर में भी रहा कीजिए, ऐसा तो कहे नहीं। और ऐसा कभी नहीं है कि कोई वृंदावन पूछा तब तक भगवान कहीं एब्सेंट है, कहीं दूर चले गए हैं, नहीं, यहाँ रहते ही है। नित्यम शब्द प्रयोग किया जाए, सनिध्यम नित्यदा हरे, हरे शरण चर्चितम तत्तात गच्छ भद्रम ते जनायास्तट सुचि पुण्यम मधुबनम जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है। ध्रुव महाराज को कहा बेटा यदि तुम श्री कृष्ण को पाना चाहते हो, विष्णु को पाना चाहते हो, तो सबसे शक्तिशाली देश का नाम बता रहा हूं, मधुबन जाओ। यहाँ मधुबन से तात्पर्य संपूर्ण ब्रजमंडल है, आप गोकुल कहिए या वृंदावन कहिए या मथा कहिए या मधुबन, इसका तात्पर्य 84 कोस ब्रजमंडल होता है, तो वहां जाओ, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। कई एक तो ब्रजमंडल हेल्प करेगा और दूसरे भगवान की लीला स्थली जमुना जी तुम्हारी मदद करेंगे, जमुना में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और यह मंत्र जपना, नारद जी ने दिया और यह करके ध्रुव महाराज 6 महीने के भी भगवान को पा गए। वो ध्रुव लोग गए बाद में, लेकिन ध्रुव लोग तो इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष राज्य करके गए, 36,000 वर्ष के बाद गए, लेकिन वो 5वें-6वें वर्ष में ही वो कमा लिए थे दो लोग भगवान का भजन करके। तो ऐसा कौन व्यक्ति समर्थ बताइए, कौन देवता है, कौन राज्य है जो इस तरह से देखता है। हम कोई व्यक्ति दूसरे देवता की शरण ले तो देवता अगर पूरी ताकत लगाएगा जितना है उतना देगा, और क्या करेगा बताइए, जितना है उतना ही देगा ना, ज्यादा ज्यादा ताकत लगाएगा तो दम निकलेगा उसका देने में। अच्छा ये भी बताइए, देवताओं का ऐसा जितना रखते हैं नहीं दे सकते, कोई मंगा की सेठ के पास जाए मांगने के लिए तो पूरा कोठी हवेली सारा थोड़े लिख देता है, 2-4 रुपया दिया और कहता है जाओ ठीक। लेकिन भगवान
भगवान का स्वभाव है जितना है उतना तो नहीं देते हैं और अपने को भी दे देते हैं। भगवान का स्वभाव है, लेकिन भगवान देने के बाद ही फिर बचे रहते हैं, ये उनका स्वभाव है, वो अंत है। इस प्रकार की कथा रामायण में है कि जब विभीषण जी भगवान की शरण में आ रहे थे, वानरों में बहुत चर्चा चलने लगी कि रावण का भाई आ रहा है। रावण तो प्रसिद्ध था, सीता जी को चुरा कर ले गया था, अब तक सीता जी वहीं थे, हनुमान पता लगा कर आ गए थे। ऐसे खल है रावण भाई भी त्रिकंड रावण ही होगा, ये कुछ वानर यही सोच रहे थे। जैसे सुग्रीव जी राजनी में विशारद थे, तो वे सोच रहे थे रावण का भाई मिल रहा है तो निश्चित भेद हमारा ले न सटावा, वो दुष्ट हमारा भेद लेने आ रहा है। तो भगवान की चर्चा चलने लगी, किसी ने आकर कहा कि आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का दशम का भाई आपसे मिल आया है। तो भगवान थोड़ा सा चकित हुए कि लीला किए, दशानन का भाई आ रहा है। अच्छा, तो भगवान कुछ अंतव्य सुनना चाहते थे अन्य बानरों के, भगवान के सलाहकार थे। अब भगवान के सलाहकार देवता नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, यही बानर भालू थे। भगवान इतना मान देते हैं, लेकिन बड़े एक्सपीरियंस्ड भालू थे, उसमें साधारण नहीं थे। तो आपस में गोष्ठी हो लगी, इष्ट गोष्ठियां लगी, अब क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार करना है। तो भगवान चुप थे। कुछ बानर कहने लगे, निश्चित ही भेद लेने आया है, इसलिए उसे यही बांध करके रख लिया जाए, यहां सोचा राम लंका में जाकर न दे पाए। और हनुमान जी जानते थे कि वो तो भक्त है, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना है। हनुमान जी दीक्षा देकर आए थे लंका में, विभीषण जी को सब संतना देकर आए थे, तो वो तो जानते थे वो तो शरण में आ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी थोड़ा चुप थे, वो सुनना चाहते थे और बात। तो सुग्रीव जी ने साफ कर दिया, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको बांधा जाए, यहां से नहीं मत दीजिए, जब रावण का वध हो जाएगा तब इसको फिर कर दो, बाद में चला जाए। कोई कहते थे कि नहीं अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका हाथ काट लेना चाहिए, उसका ये करना चाहिए, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, जीभ काट करके छोड़ दो, क्या जाकर बताएगा। मुझे इस प्रकार की नीति है राजाओं की। तो बहुत बहुत बातें रही थी, या उसको आने ही मत दो, वहीं से भगा दो, कुछ लोग कह रहे थे ऐसा। तो भगवान ने कहा तो ये तो ठीक है, ऐसा अगर भेद न रहा होगा तो हमें की चिंता नहीं है, क्योंकि जगमह सखा निशाचर देते लक्ष्मण हन निष्माते। एक साचर की बात क्या करते हो, संसार के सारे राक्षसों को लक्ष्मण आधे पल में मर सकते हैं, उस चिंता नहीं है, भेद ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, हमें उस चिंता नहीं है। नहीं, ये पता लगाओ कि कहीं सचमुच शरण में आ रहा है क्या, अगर शरण में आ रहा होगा तो मैं उसे प्राण की रक्षा करूंगा, उसको शरण में रखूंगा और उसे लंका का राजा बनाऊंगा। लंका का राजा बनेंगे, फिर वही एक रावण को मार कर दूसरा रावण नियुक्त करें। तो ऐसा महात्मा लोग कथा कहा करते हैं कि सुग्रीव जी बहस करने लगे, कहने लगे कि हाँ विभीषण आपकी शरण में आएगा तो लंका का राजा बना देंगे, और रावण शरण में आ जाएगा तो क्या करेंगे। शरण में आ जाए, शरण में रावण शरण में आएगा तो क्या करेंगे। तो भगवान कहते हैं उसे अयोध्या का राजा बनाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान देते हैं तो यह मान कर देते हैं कि कुछ नहीं दिया, और देवता लोग देते हैं तो उनका दम सरक जाता है, वो बहुत काल तक याद रहते हैं, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, बाप रे बाप, इतना नहीं देना चाहिए था, बहुत दे दिया। और वो भी बहुत कष्ट के बाद देते। लिखा गया है कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमात सोई संपदा की लेकिन विभीषण को वह संपत्ति कैसे मिली, केवल गर्दन झुका दिया भगवान को, काटना नहीं पड़ा। तो एक को मस्तक काट कर दिया तब लंका का राज मिला, और एक आकर केवल प्रणाम कर दिया बस लंका का राज मिल गया। तो आप जरा विचार कीजिए, भजनीय वास्तव में कृष्ण, स्वयं भगवान शिव आकर के स्तुति कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं, हमारे परिवार को पोसेंगे, हमको पोसेंगे, देश को पोसेंगे, सब कुछ ठीक रहे। भगवान के शरण में होना चाहिए। वास्तव में सारा दुख कृष्ण को भूलने के कारण है, ये भगवान का स्वभाव है। वे देते हैं तो अफसोस करते हैं कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, सब कुछ दे करके भी अफसोस करते कि नहीं दिया, और सामने देने में भी उनको संकोच होता है। ये प्रश्न उठता है कि सुदामा जी को भगवान ने सामने ही कुछ क्यों नहीं पैसा दिया, 2-4 करोड़ दे दिए होते, कम से कम चेक भी दे दिए होते या और भी तरह से कह दिए होते कि आपके लिए मैं घर बनवा दिया, अब जाइए। और एक ही रात सुदामा जी रहे, भागवत के अनुसार एक रात रहे, क्योंकि सुदामा जी को वहां रहने में बड़ा संकोच होता था, उन सुंदर पलंगों पर बैठने में, उन सोने की थालियों में खाने में, और भगवान हमेशा लिंगन करते थे, बैठाते थे, और यह अभी भगवान ने नहीं किया कि चलो खूब बढ़िया रेशमी वस्त्र पहना दे उनको, जैसे फटे पुराना धोती थी भगवान भी छोड़ दिए वैसे ही, और फिर भी स्वागत में लगी हुई थी भगवान की रानियां, कोई पंखा झलती थी, वो तो दरिद्र ब्राह्मण शरीर में नस उभरा था, गंदी धोती थी फटी पुरानी, और फिर सेवा ऐसे चल रही थी, तो सुदामा जी तो जल्दी भागना चाहते थे उड़ाना नहीं चाहते थे वहां पर और भगवान की भी अद्भुत लीला है, भगवान चाहते तो एक क्षण में उनका शरीर ठीक कर सकते थे, कपड़ा तो गंजा ही था पहना सकते थे, वो सब नहीं की, भगवान चलते समय गमछा भी नहीं दिए कि ये आपकी धोती फट गई है इसको पहन लीजिए कुछ नहीं किए। अच्छा, जब रानियों ने ये सुना, तो सुदर्शन सिंह चक्र जी लिखे हैं, जब रानियों ने ये सुना कि ये कहीं दिन रहने वाले हैं और ये कहीं रात, तो और निमंत्रण आया कि हमारा भोजन कर ले, हमारा भोजन कर ले, 16,108 घर से निमंत्रण है। तो भगवान ने सुदामा जी से कहा कि आपको कम से कम 1008 दिन तो यहाँ रुकना होगा। तो 1008 दिन वो धोती चलने वाली थी एक हजार आठ दिन रहिए, क्योंकि आपकी भाभियां इतना ज्यादा संख्या में, हम किसको मना करें, और एक के घर जाएंगे तो दूसरा रंज होगी, हमको यहाँ रहना है ना, आप जो चले जाए तो आप अपने भाभियों की इच्छा पूरी कीजिए, आप रहिए। और सुदामा जी तो कहते नहीं, हम सवेरे चले जाएंगे, हम सवेरे चले। तो भगवान ने सूचना भेज दिया अपने पत्नियों के पास कि सुदामा जी सवेरे जाने वाले हैं। तब तो सब अपने घरों में अब 56 पकवान कुकिंग करना चालू कर दिए, वो आज ही भर रहेंगे तो हमारा खा ले, हमारा खा ले, हमारा खा ले। तो चक्र जी कहते थे कि थालियों की ढेर पहाड़ जैसे गंज गई सुदामा जी के खाने के लिए। अब सुदामा जी क्या करें, और सुदामा जी के सामने अगर एक थाली भी रखी जाए तो सुदामा जी को पता ही नहीं था कि पहले क्या खाना चाहिए, ऐसा वो सुने ही नहीं थे, पकवान खाने की तो बात ही क्या है। तो सुदामा जी तो संकोच में एकदम दब रहे थे कि मैं नहीं आया होता तो ठीक होता, अब किसका किसका खाए, वो सब कह दे हमारा खा लीजिए, हमारा खा लीजिए, आप इतना जल्दी जा रहे हैं क्या किया, जब हमारा खा लीजिए, हमारा खा लीजिए। तो भगवान ने कहा ऐसा कीजिए कि सभी थाली में से एक एक कौर खा लीजिए। तो सुदामा जी कहे फिर भी तो 16,000 कौर कैसे मैं खाऊंगा कैसे खा सकते। अच्छा, किसी तरह से मान लीजिए थोड़ा थोड़ा चखे। चक्र जी लिखते हैं तब तक 16,000 गिलास में अमृत जैसा पेय आ रहा था, आचार आ रहा था, विविध आइटम जितना था सब 16,000 आ रहा था इतना। तो अंत में अब सुदामा जी तो खाते खाते कुछ पेट ज्यादा भर गया, भगवान से कहने लगे आप नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तो सब कुछ खाने के बाद 16,105 आया और सुदामा जी तो जिंदगी भर पान देखे ही नहीं थे, खाने की बात वो तो ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण। और भगवान कहने लगे भाई ये तो खाना पड़ेगा सब, क्योंकि अब हम क्या करें, आप उनको समझाइए जो ला रही है। अब सुदामा जी कहने लगे कि हम पान कभी नहीं खाए हैं, हमको ये मत खाने दो, ये मत खाने दो, लेकिन फिर भी कुछ खाए। तो इसके बाद पाचक दवाइयां आई, वो भी बहुत ज्यादा। और जब सवेरा हुआ, रात भर तो गुरुकुल की बातें होती रही, सोने भी नहीं दिए कृष्ण ठीक से, मतलब नींद भी नहीं आई रात भर। भगवान इतना प्रेम किए कि मित्र वो याद आ रही है, उस दिन हम लोग गुरु के लिए लकड़ी लाने गए थे, फल फूल लाने गए थे, तो वर्षा आ गई, हम लोग रात भर भींगे थे, तो गुरु जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बिना पढ़े तुम लोगों को ज्ञान हो जाएगा, तो याद है। और आप तो शुरू से ही बहुत विरक्त जैसे रहते थे, आपने विवाह किया कि नहीं? और उनकी पत्नी ने भेजा था ये सब, चावल खा चुके थे उसके पास। तो आपने विवाह किया कि नहीं? विवाह किए तो कैसे, घर का क्या हालचाल है, आपका जॉब क्या, क्या काम करते हैं? पूजा पाठ करते हैं तो आपको मिलता है घर गृहस्थी ठीक चल रही है ना? अब क्या सुदामा जी बतावे कि ठीक चल रही ठीक क्या चल रहे थे, जब कृष्ण को देने के लिए भेंट चार घरों से चार मुट्ठी चिवड़ा मांगा गया, और चारों मुट्ठी चार किस्म का चिवड़ा था, और उसको लेकर आने के लिए फटा पुराना कपड़ा था उसमें बांध करके स्त्री ने दिया था, और कहा था कि इसको संभाल करके लेकर जाइएगा, नहीं तो रास्ते में ही सब बो दिया जाएगा, फट जाएगा। तो इस तरह से सुदामा जी गए थे, लेकिन भगवान को पूछ रहे थे कैसे घर चल रहा है, और बच्चे ठीक है, हमारी भाभी कैसी है, ऐसे भगवान पूछ रहे थे। और आपने जो मुझे दिया चावल, तो मैं भक्तों के दिए हुए छोटे से उपहार को भी बहुत अधिक ग्रहण करता हूँ। भगवान यही कह रहे थे कि आपने हमें अच्छा दिया, लेकिन मैं भी आपको दूंगा, इसकी चर्चा भगवान ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान ये बार बार सोचते थे कि सुदामा ने मुझे जितना दिया है उतना मैं दे नहीं पाऊंगा। क्यों? कि इसकी जितनी औकात है, जितनी शक्ति है, उस शक्ति से बाहर दिया है मुझे, और मैं अपनी शक्ति भर भी नहीं देने जा रहा हूं। तो भगवान को बड़ा शर्म लग रही थी कि ये कहना कि मैं आपके लिए घर बनवा दिया, चाहे किया ओके, भगवान कह नहीं पाते थे। और वास्तव में अगर तुलना करके देखा जाए तो सुदामा जी ने जो दिया भगवान उतना कहां दिए, लेकिन एक दृष्टि से भगवान ने बहुत दिया। तो जब सुदामा जी चले गए सवेरे, कोई एक पैसा नगद नहीं, कुछ नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि भगवान ने हमको क्यों नहीं दिया, बहुत अनुकूल भाव से सोच रहे हैं कि भगवान ये सोचे कि ये ब्राह्मण धन पा करके फिर विषय भोग में लग जाएगा, इसकी इंद्रियां बस में नहीं रहेंगी, मेरा भजन छोड़ देगा, यही इसी से कृपा करके उन्होंने कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस तरह से सोचते जा रहे। लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचे जहां उनका घर था, तो सुदामा जी को पहले तो यह भ्रम हुआ कि मैं पुनः द्वारका ही आ गया रास्ता भूल करके, क्योंकि ठीक द्वारका जैसे था वैसे ही पूरा नगर बन गया था, ठीक वैसे ही कला, वैसे ही चमक रहे थे भवन सब कुछ, और नगर निवासी भी उसी तरह से देवता जैसे दिख रहे। तो सुदामा जी तो बड़ा फिर बड़ी कि हमारा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया, ये कहाँ चला आया। फिर बाद में जब गांव के चारों तरफ देखते हैं कि उधर वो नदी थी, उधर वो पेड़ था, तो देखे तो वो तो वही है। तो सोचे कि कोई राजा रात में ही कोई प्लॉटिंग करके बना दिया, क्या किया यहाँ कौन रात भर में ही यह राजा आ करके बनाया, और हमारी झोपड़ी जो थी वो कहाँ फेंकी गई कि जला दिया, क्या किया। अरे भगवान इतना घाटा, एक तो दरिद्रता में जीवन बीत रहा था, और उस पर अब वो भी अवस्थान भी छीन लिया गया, क्या हुआ। सुदामा मंदिर देख डरी, सूरदास जी ने गाया है, सुदामा उस घर को देख डर गए, कहाँ गई मेरी राम मड़ैया, कहाँ के भूप उतरी, कहाँ मेरी मड़ैया चली गई, कहाँ मेरी झोपड़ी गई और कहाँ का राजा आ गया। हमें सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तब तक लक्ष्मी जी के समान रुक्मिणी जी के समान सुंदरी एक स्त्री थाली में आरती सजा करके आई और उसके साथ बहुत सी सब। तो बाद में सुदामा जी तो पहचान नहीं पाए कि यह उनकी पत्नी है, तब दूसरी स्त्री ने बताया कि यह आपकी पत्नी है और ये जो भवन बना है सब द्वारकाधीश की व्यवस्था है, ये आपके मित्र ने बनाया है, विश्वकर्मा जी को आज्ञा करके रात में ही सब कुछ बनाया गया। तो भागवत में लिखा गया है कि वहाँ रुके रहे, जब ज्यों ही सुने सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए और हृदय गदगद हो गया, वाणी गदगद हो गई और लगे कहने वो कितना संकोची हैं वे, इतना दे करके भी वे मुख से कहे नहीं कि मैं कुछ दे रहा। तो सुदामा जी यही कहते हैं कि जन्म जन्म में मुझे कृष्ण की मित्रता चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, भक्त के सबसे बड़े धन भगवान। तो इस तरह से भगवान देते हैं तो संकोच बोलते भी नहीं है कि बहुत दिया या ये दिया ये दिया, परोक्ष में देते हैं। तो सुधा जी वहाँ याद करते हैं कि प्रायः बादल वर्षा करते हैं तो रात में करते हैं, जब किसान सो जाते हैं तो रात्रि में खेतों में वर्षा होती, इसी तरह से प्रभु किसी भक्त को देते हैं तो परोक्ष में देते हैं, दूसरे लोग देते हैं तो बहुत कह रहे आपको दे रहा हूँ याद रखिएगा, ये कीजिएगा कीजिए, भगवान इस तरह देते हैं। तो यही प्रभु जैसे सुदामा जी के हैं वैसे हमारे भी हैं, और गीता में बारम्बार कहते हैं मैं ही ती हूँ, मैं ही बताऊँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही पोष रहा हूँ, और वैसे भी जो परिवार का काम चल रहा है वास्तव में भगवान ही चला रहे हैं, ये विश्वास करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि से या हमारे बिजनेस से हमें जो उपाय से चल रहा है, नहीं वो भगवान चला रहे हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान पर निर्भर कर विश्वास करता है तो उसका कई गुना अचल लगता है, और प्राय सब चिंता होती ही है हमारा ये हो हमारा ये हो, तो क्यों नहीं द्वारकाधीश को अपने जीवन की बागडोर सौंप दी जाए, ठीक है आप कीजिए। भगवान को इसमें आनंद आता है कि उन पर कोई भरोसा करे, उनका आश्रय ले ले, भगवान पर भार नहीं होता। तो इस तरह से देवता लोग माता दुखी से कह रहे हैं कि आप पुत्र हमों का रक्षक है, जादुओं का रक्षक है, आपका रक्षक है, कंस निश्चित मरेगा, चिंता मत कीजिए। तो माता देवकी को एक तरह से प्रीचिंग ताजा है देवताओं के लिए कि आप क्यों क्या कर रही हैं, कंस मर चुका है आप यही समझिए, और समस्त जादव फूलेंगे फलेंगे, तो आपका पुत्र सबको पोसेगा। तो शास्त्र के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है, वास्तव में हम लोगों के लिए दिया जाता है, ताकि हम लोगों को कहा जाता है कि इसको सुनिए इसको पढ़िए, तो सुन पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के गुण को समझा जाता है। इस तरह से हमें कृष्ण ग्रहण करना चाहिए, परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा, सब सुखी रहेगा, तो श्री कृष्ण को ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद शाम को हम थोड़ी सी कथा कहें, भगवान किस तरह प्रकट हुए, उनके प्राकट्य की कथा कहें, अभी तो गर्भ में है तो इसलिए गर्भ स्थिति का श्लोक कहेंगे। लगभग ये भागवत सप्ताह समाप्त होने को है, लेकिन हम लोग तो बहुत कष्ट सुन पकड़ पाए भागवत का 7 दिन में, ठीक से 3 अध्याय भी पूरा नहीं कर पाए, यहाँ तो एक ही श्लोक की चर्चा हो। तो श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, 335 अध्याय की अगर इस रफ्तार कथा कही जाए तो कम से कम 100 सप्ताह तो लग गया 100 सप्ताह में, वो भी एक एक अध्याय ऐसा है, जैसे 10 स्तुति 87वां अध्याय दशम स्कंध का है कि 2 अलोक से अधिक कथा नहीं कही जा सकती है, एक कथा प्रथम सिटिंग में, दूसरा श्लोक दूसरे सिटिंग, तो उसमें ही 15-20 सप्ताह हो जाए। इस तरह का, जैसे ब्रह्मा जी की स्तुति है चौदहवें अध्याय में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन भी तो इसी के लिए है ना, भगवान काफी दिन जीत दिए हैं, तो पढ़ना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, कभी रूपा जी का टेप सुनना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना, तो इस तरह से लगे रहना चाहिए। तो इस वृंदावन धाम में और जन्माष्टमी के अवसर पर इस कृष्ण बलराम मंदिर के आंगण में हम लोग भगवान की चर्चा किए, और इस बाण के गुणानुवाद में हम वृंदावन के व्यवस्थापगण का मैनेजमेंट पूर्ण हाथ है। यदि ये व्यवस्थाएं नहीं किए होते तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम से बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ के व्यवस्थापकों को कि भगवान ने को ऐसी सुहमत दी। तो प्रत्येक वर्ष ये अवसर, इस शुभ अवसर, इस शुभ देश में मिलता है हम लोगों को, हम तो अपने को बहुत आभारी मानते हैं महामना प्रभु का जो इकरा करके अवसर देते। मैं पहले सोच रहा था कि एक दिन लेट जाऊंगा यहाँ पर, सोच रहा था लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था कि नहीं चलना चाहिए समय से, चलना चाहिए समय से, हाँ देर से। मैं सोचता था कि एक दिन देर से आऊंगा, एक दिन दूसरे भक्त कुछ कथा कहेंगे, और मेरे मन में ये भी इच्छा थी कि थोड़ा दूसरों को भी निकलना चाहिए, कहना चाहिए, हम पर ही कब तक भार रहे। मैं ये भी सोच रहा था, तो मैं वैष्णव दास से कह दिया था कि आप लोग है ना इसको ले चलिए कुछ लोग मिल करके, तब तक हम आएंगे। लेकिन मैं लंदन में था और मुझे इतनी याद वृंदावन की आने लगी, खास करके सावन पूर्णिमा की, और मैं कई साल से रहा हूँ यहाँ, मिस नहीं किया हूँ पूर्णिमा। तो मेरे मन में आया कि अब तो चलना चाहिए, चलना चाहिए, तो मैं तत्काल ही फोन कराया आरक्षण के लिए, और भगवान की कृपा से मिल गया। तो मैं राधा रमण को कहा कि अब जो भी प्रोग्राम है आप यहाँ कीजिए, अब तो मैं चल आया। ये लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो मेनर में प्रोग्राम है, संडे को प्रोग्राम है, सैटरडे को है। मैं कहा किसी भी डे को प्रोग्राम हो अब हम चले। वृंदावन धाम की कृपा से मैं तो यहाँ भाग करके आ गया। तो सब लोग आश्चर्य करते थे, पहले आ गए। तो यह भी एक शक्ति है कि वह समय पर हमको पहुंचाती है बलराम पूर्णिमा के दिन, और मैं आकर के बहुत प्रसन्न हुआ। मैं सोचा मैं वृंदावन मंदिर का हूँ, अपने घर का हूँ, और साल में यही एक सेवा मैं करता हूँ, यह भी अगर देर से करूँ तो ठीक नहीं है, तो मैं मुझे कहना चाहिए। तो यहाँ के भक्तों ने, विशेषकर मैनेजमेंट ने जो सदस्यता दिखाई है और भक्तों के अवसर दिया है, इसलिए वे भूरी भूरी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोग आए बहुत शांति से इस कथा में, इस यज्ञ में भाग लिए, तो यह आपका सौभाग्य है और आगे भी आना चाहिए और अपने स्वजनों को लाना चाहिए। ऐसे उत्सव तो सब जगह होते हैं, लेकिन जो भगवान के का जो सुजोग मिलता है वो कुछ और ही है।